بسم الله الرحمن الرحيم. یہ حضرات محدثین کے یہاں اولیاء اللہ اور صوفیاء کی جتنی قدر و منزلت تھی وہ ایک مثالی ہے، کہیں دیکھی نہیں جاتی، تو نہ معلوم اس کو الٹا کر کے کیوں پیش کیا گیا کہ دونوں میں ایک زبردست خلیج اور برزخ ہے، آڑ ہے، یہ ان کو ناپسند کرتے ہیں، وہ ان کو ناپسند کرتے ہیں. دوستو، ایسا ہرگز نہیں، ایسا ہرگز نہیں، کیونکہ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا حال یہ تھا کہ جب ان کے پاس کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے آتا تو اگر وہ شریعت کا مسئلہ ہوتا، فقہ کا مسئلہ ہوتا، کہ قرآن و حدیث کی کوئی تشریح ہوتی تو وہ بتا دیا کرتے، لیکن اگر علم باطن اور روحانیت اور اشارات جنہیں کہا جاتا ہے اس سے وہ سوال متعلق ہوتا تو حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا جواب کیا ہوتا تھا؟ وہ فرماتے کہ جاؤ، بشیر حافی کے پاس جاؤ، اس کا جواب آپ کو وہاں سے ملے گا. تو اب اس درجے کی قدر و منزلت کہیں دیکھی گئی کہ اتنا بڑا امام وہ سائل کو پوچھنے کے لیے بشیر حافی کے پاس بھیجتا ہے؟ اور ایک شیبان راعی ہیں جن کا قصہ سنایا تھا کہ ان کے بارے میں حضرت امام سے کہا گیا کہ بدو گنوار آدمی جنگل میں پھرتا رہتا ہے، تو آپ ان کے یہاں کیوں جاتے ہیں؟ تو فرمایا ہے کہ انہ وفق لما فلنا، کہ انہیں اس علم کی توفیق دی گئی جس سے ہم غفلت میں پڑے ہوئے ہیں. تو یہی بزرگ ہیں کہ جن سے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ استفادہ فرماتے ہیں، جن سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ استفادہ فرماتے ہیں. تو کیا بات تھی آخر؟ اب اس دن جلسے میں میں نے عرض کیا کہ کعبہ سامنے ہے اور باب کعبہ پر جا سکتے ہیں اور ملتزم پر دعا منصوص ہے، وہاں جا سکتے ہیں، اور ملتزم العجائز من قریش پر جا کر دعا کر سکتے ہیں، کہ جو ملتزم جہاں ہم جا کر باب کعبہ کے پاس اس وقت ان دنوں ہمارے زمانے میں جہاں ہم چمٹتے ہیں اس کے بالکل بالمقابل سامنے والی دیوار کے قریب، وہاں जो दूसरा दरवाज़ा था वो जगह अजायज़ कुरैश के लिए थी, तो वहाँ जाकर दुआ मांगी जा सकती है। लेकिन बीर ज़मज़म पर, ज़मज़म के कुएं पर ख़तीब बगदादी दुआ मांग रहे हैं, और दुआ में क्या मांगते हैं कि इलाही मैं मर जाऊं तो मुझे बिशर हाफ़ी का पड़ोस नसीब हो। उधर हुमैदी अंदलुस के रहने वाले, वो इस क़दर गर्वीदा कि वो मरते वक्त हाकिम को बुलाते हैं, मुजफ़्फ़र हाकिम था, उसे बुलाकर वसीयत फरमाते हैं कि मैं मर जाऊं तो बिशर हाफ़ी के करीब मुझे दफन करना, जब ऐसा नहीं किया गया कहीं और दफन किया गया। वो जगह भी बड़ी अजमत वाली समझी जाती थी, अबू इसहाक़ शिराज़ी के करीब उनको दफन किया गया। 3 बरस के बाद फिर वो वसीयत फरमाते हैं, ख़्वाब में डांटते हैं उसी मुजफ़्फ़र से, कहते हैं कि अरे भले मानस, मैंने तुमसे कहा था कि तुम बिशर हाफ़ी के करीब मुझे दफन करना, तुमने मुझे किसी और जगह दफन कर दिया। कब्र खोली जाती है तो सारा इलाका खुशबू से मुअत्तर, और 3 बरस में एक ज़र्रा भर भी न हुमैदी के जिस्म को मिट्टी नुकसान पहुंचा सकी। उनके जिस्म, उनका जिस्म तो सालिम और सलामत रहा, मगर जो कफन था वो भी उसी हाल में जिस तरह के अब पहनाया गया हो। सुनिए बिशर हाफ़ी कौन है। ये बिशर हाफ़ी अपने मामू अली हशरम के मुरीद और तरीक़त में उनसे इस्तिफादा किया, इरादत उनसे थी, और लिखा है कि उसूल फुरू के बड़े आलिम थे। मरवा में पैदा हुए और बगदाद में मुकीम थे। लेकिन किसी वजह से हाल ख़राब हो गया, अपनी डगर से हट गए, शराबो मस्ती की सूझी। लेकिन ये इल्म इंसान को बचा लेता है, जहालत के घटाटोप अंधेरे में इंसान हो तो फिर बचने की उम्मीद बहुत कम होती है। अब चूंकि इल्म था, शराब की मस्ती में चल रहे हैं, रास्ते में पड़ा हुआ एक कागज़ का टुकड़ा मिला जिस पर देखा कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम तहरीर है। उसे उठाया, साफ किया, आँखों से लगाया, खुशबू से उसे मुअत्तर किया। इधर ये काम शराब और मस्ती में चूर होने की हालत में बिशर अंजाम दे रहे हैं, उधर किसी अल्लाह के बंदे को मालिक की तरफ से इल्हाम हुआ और उनसे कहा गया कि जाओ बिशर हाफ़ी के पास जाओ और उनसे कह दो कि तुमने एक कागज़ का टुकड़ा जिस पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ था, हमारा नाम उस पर लिखा हुआ था, उसे पाक किया, हमने तुम्हें पाक कर दिया। अल्लाह ताला इस मुबारक महीने में गुनाहों से हमें पाक साफ बना दे, और रमज़ान मुबारक का महीना ख़त्म हो और हम सब की मग़फ़िरत हो जाए, और हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बददुआ से बच जाएं कि उनके लिए हलाकत है कि रमज़ान का महीना उन पर गुज़र जाए और वो अपने रब से अपनी मग़फ़िरत न करवाएं। अल्लाह ताला हमें इसे महफूज रखे। अब ये कासिद आकर अपना पैगाम पहुंचाता है कि तुमने हमारे नाम को पाक किया, हमने तुम्हें पाक कर दिया। दोस्तों, अल्लाह ताला ने कितने आसान तरीक़े रखे हैं अपनी मग़फ़िरत करवाने के और मालिक को मनवाने के, कितने आसान तरीक़े कि एक कागज़ के टुकड़े को पाक साफ किया, खुशबू लगाई, इसी से काम बन गया। अब जिन बुज़ुर्ग को इल्हाम हुआ तो वो जब आंखें खोलते हैं सोचते हैं कि मैंने ये क्या देखा, मेरे तसव्वुरात हैं या शैतान का इसमें कोई दखल है? क्यों कि ज़ाहिर शरा के एतबार से तो वो शख्स फासिक और फाजिर और शराबी है, और उसके मुतालिक ये पैगाम और मालिक बराह रास मुझे हुक्म फरमाते हैं कि तुम उनके पास जाओ और मेरा ये पैगाम पहुंचाओ। उन्हें इश्काल हुआ कि कहीं ये इबलीस की तरफ से कोई मुझे गलत काम के लिए तो नहीं भेजा जा रहा, मैं गलत तो नहीं देख रहा हूँ। उठे, ताज़ा वुज़ू फरमाया, और नमाज पढ़ी कि इलाही मैं ये क्या देख रहा हूँ, तो और सो गए तो फिर दोबारा वही देखा। दोबारा देखने के बावजूद भी उन्हें तसल्ली नहीं हुई, फिर वुज़ू किया, फिर नमाज़ पढ़ी, फिर लेटे, फिर तीसरी मर्तबा में फिर मालिक की तरफ से वही हुक्म उन्हें दिया गया। अब अलसबाह बिशर हाफ़ी के घर पहुंचते हैं, दरवाज़े पर पहुँच कर देखा कि वो तो बदमस्त और बेखबर पड़े हुए हैं। घरवालों ने कहा कि तुम्हें उनसे क्या काम, तुम भले आदमी मालूम होते हो, वो तो अपनी मस्ती में शराब और कबाब में पड़े हुए हैं। तो इन्होंने कहा कि उनसे जाकर कह दो कि मैं एक पैगाम लेकर आया हूँ। तो जब बिशर हाफ़ी को जाकर ये जुमला पहुँचाया गया कि वो आने वाले साहब यूँ कहते हैं कि मैं पैगाम लेकर आया हूँ, तो पूछो ये किसका पैगाम, तो अब वो वहीं अपनी जगह पड़े हुए हैं और घर वाले खिदमत अंजाम दे रहे हैं, वास्ता बने हुए हैं। तो वहीं पड़े पड़े पूछते हैं उनसे कि पूछो कि किसका पैगाम है। तो जब इधर इन्होंने कहा कि खुदा ताला का बराह रास पैगाम है आपके नाम, ओहो ये सुनना था कि बिजली कौन गई जिस्म में, बिशर रोने लगे और आहुजारी करने लगे, आह अब फिर सवाल कर अपने दिल में सवाल करते हैं कि ये पैगाम क्या होगा, ये तो इताब होगा या इकाब होगा। सिर्फ अल्लाह का नाम सुनते ही कि पैगाम क्या है और उसके सुनने की भी हाजत नहीं, क्यों खुदा मुझे पैगाम भेजता है। हम रोज़ पढ़ते हैं कुरान खुदा का, आठों पहर अल्लाह ताला हमें पढ़ने की तौफीक अता फरमाए और हम हमारे बुज़ुर्गों की तरह से हज़रत शेख कुद्दुस रूह की खानकाह में सैकड़ों की तादाद में ये कुरान शरीफ पढ़ने वाले रमज़ान मुबारक में होते थे। अभी भी हज़रत पीर साहब को अल्लाह ताला जिंदा सलामत रखे, हज़रत पीर साहब की उम्र में बरकत फरमाए, उन्हें शिफाए कामिला आजिला मुस्तमिला अता फरमाए, उनका साया हम पर तादेर बाकी रखे। हज़रत पीरानी साहिबा को शिफाए कामिला आजिला मुस्तमिला अता फरमाए, उन्हें बीमारियों से नजात अता फरमाए, राहत आफियत से रखे, इस घर के फैज़ को क़यामत तक के लिए उम्मत पर बाकी रखे। तो वहाँ भी आप जाएं तो आपको बड़ी तादाद में मिलेंगे जिनका मामूल रोज़ एक ख़त्म एक कुरान। अल्लाह करे कि ये तसलसल सुनते रहते हैं आप अल हदीथुल मुसलसल, तो ये भी एक तसलसल बाकी रहेगा ख़त्मात का। सारे साल में रोज़ पढ़ने वाले कहीं कहीं तो खाल खाल तो हों, और रमज़ान मुबारक में जैसे हज़रत के यहाँ बड़ी तादाद, इस तरह कोई जमात तो हो ताकि ये जो उम्मत की कश्ती थपेड़े खा रही है, डामाडोल हो रही है, कभी इधर झुकी कभी उधर झुकी, तो अल्लाह ताला इसे डूबने से बचाए, किनारे पर लगाए। तो नाम सुनते ही कि किसका पैगाम, का खुदा का पैगाम, तो बिशर रोने लगे और कहा आह ये तो इताब होगा, मुझे डांट होगी डांटा जाएगा, या इकाब और अजाब और सजा होगी। और वहीं से उनकी ज़िंदगी का रुख बदला और उन्होंने तहिया कर लिया, इकरार कर लिया, आहद कर लिया कि अब इस काम में इस हाल में मुझे तुम नहीं देखोगे। फिर उन्होंने तौबा नसूह कर ली और अब कितना प्यारा उनका नाम, ओहो कि अल्लाह ताला ने जो पैगाम दिया था उसमें ये कलिमात थे कि जाओ बिशर से कहो कि तुमने मेरे नाम को ताहिर किया पाक किया तो हम तुम्हारे नाम को दुनिया में जाहिर करते हैं। तो अब हर एक की ज़ुबान पर, बड़े बड़े अइमा और फुकहा की ज़ुबान पर बिशर हाफी, बिशर तो उनका नाम था और हाफी के माना नंगे पैर वाला, जिनके पैर में जूता ना हो, उस वक्त का बगदाद, अल्लाह कितना अजीम, दुनिया भर का दारुल खिलाफा और कितनी दौलत की फरावानी, और वहाँ कोई बग़ैर चप्पल और जूते के। तो अल्लाह तबारक व ताला के ये मखसूस बंदे वो उन आदाब को इल्म के दर्जे में नहीं रखते जिनको वो अदब समझते हैं, जैसे हमारे भाईजान रहमतुल्लाह अलैह, पोते को बुलाना तो उसको लाओ, वो किधर गया, फिर खादिमा ने पूछा तो रास की बात बताई कि जब मेरा वुजू होता है तब मैं कहता हूँ मोहम्मद इधर आओ, मोहम्मद को लाओ, जब वुजू नहीं होता तो उस वक्त मैं ये नाम मुबारक अपनी ज़ुबान से अपनी ज़ुबान पर नहीं लाता। बिशर हाफ़ी जो नंगे पैर रहते थे इसलिए उनको कहा गया हाफ़ी। तो पूछा गया कि ये आप चप्पल जूते पहनते क्यों नहीं, तो फरमाया कि एक तो है कि अल्लाह ने हमारे लिए इसको फ़र्श बनाया है, तो मेरे मालिक का बनाया हुआ फ़र्श उसके ऊपर मैं जूते से चलूं, कितना मालिक का इस्तेहजार और उसकी बनाई हुई चीज़ की अजमत और एहतराम, इसी के खातिर मदीना मुनव्वरा के हरम में तो एक जमात की जमात मिलती है तारीख की किताबों में, सीरत की किताबों में, कि वो कभी हुदूद हरम मदीना के इलाके में चप्पल के साथ नहीं चले, नंगे पैर खुले पैर, कि मदीना मुनव्वरा का हरम है। मगर ये बिशर हाफ़ी बनने की और नंगे पैर वाले बुज़ुर्ग बनने की खुदा के यहाँ क्या कदर, देखिए कि अब चूँकि नंगे पैर घूम रहे हैं बगदाद में, जगह यहाँ भी जाना है वहाँ भी जाना है सड़कों पर, तो लिखा है कि बिशर हाफ़ी के ज़िंदा रहने तक बगदाद की तमाम सड़कें आप बग़ौर देखें, कहीं तलाश करें तो कहीं ज़र्रा बराबर आपको गोबर नहीं मिलेगा, हालांकि हज़ारों जानवर इतने बड़े शहर में, क्यों कि खुदा के यहाँ इस बंदे खुदा को नजासत से और गोबर से और नापाकी से बचाने के लिए इंतज़ाम किया गया, कि जिस तरह घरों में बिल्लियाँ जो सिदाई हुई होती हैं, कुत्ते जो सिदाए हुए होते हैं, जानवर भी जो सिदाए हुए होते हैं, वो जहाँ इनका उनका इस्तबल होता है अपनी जगह पर वहीं जाकर वो पाखाना करेंगे, इधर उधर कहीं नहीं करेंगे, न पेशाब करेंगे न पाखाना करेंगे। कहते हैं कि एक दफ़े एक गैर मुस्लिम के किसी घोड़े ने किसी जानवर ने जैसे ही गोबर सड़क पर किया बगदाद की सड़क पर, तो उसने चिल्ला कर कहा कि बिशर हाफ़ी का इंतकाल हो गया। कैसे मालूम तुझे? उसने कहा कि ये हमारे जानवर रास्ते पर कहीं गोबर कर नहीं सकते थे, तो लोगों ने तहकीक की तो पता चला कि वाकई उस दिन बिशर हाफ़ी का इंतकाल हो गया। एक दफ़े किसी बुज़ुर्ग से पूछा गया कि तुम इमाम शाफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में क्या कहते हो? फरमाया वह उताद में से। फिर पूछा कि इमाम अहमद इब्न हम्बल? फरमाया कि वह सिद्दीक़ हैं। बिशर हाफ़ी के मुतालिक फिर जब तीसरे नंबर पर पूछा गया तो फरमाया कि उनके बाद उनके जैसा फिर कोई नहीं होगा, इसीलिए अब्दुल्ला जल्ला कहते हैं, जल्ला ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان کا کلام ایسا جلا بخشنے والا ہوتا تھا کہ دل کی ظلمت اور سیاہی کو دھوتا ہوا چلتا تھا کہ سننے والوں کے دلوں کی سیاہی دھل جاتی تھی. تو یہ عبداللہ الجلا کہتے ہیں کہ میں نے ذوالنون کو دیکھا کہ ذوالنون مصری ان کو عبارت حاصل تھی, سہل کو اشارات حاصل تھے اور بشر کو ورع اور تقوی اور پرہیزگاری حاصل تھی. تو ان سے پھر لوگوں نے پوچھا کہ آپ کا میلان سب بزرگوں میں کس کی طرف, فرمانے لگے کہ بشر کی طرف, اور فرمانے لگے وہ ہمارے استاد ہیں, اور استاد بہت بڑے علامہ تھے, حدیث کی 60 گٹھڑیاں کتابوں کی انہیں حفظ تھی, لیکن بعد میں سب کتابیں ساری انہوں نے دفن کر دی, اور ان احادیث کی روایت نہیں کی. کسی نے پوچھا بشر سے کہ آپ حدیث کے اتنے بڑے علامہ روایت کیوں نہیں کرتے, تو فرمانے لگے کہ میں اصل میں اس کی اپنے دل میں خواہش پاتا ہوں کہ میں محدث بن کر بیٹھوں, لوگ مجھ سے پڑھیں, لوگ میرے شاگرد بنیں, میرے تلامذہ زیادہ ہوں, میرا سلسلہ آگے چلے, تو مجھے اس کی خواہش ہے, اس لیے میں اس کی روایت نہیں کرتا. اگر میں دیکھوں گا کہ میں مجھے خواہش خاموش رہنے کی ہے, تب جا کر میں ان حدیث کو روایت کروں گا. اسی لیے حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا گیا کہ حضرت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اتنا نوازا ہے کہ احادیث, فقہ, اجتہاد اور انواع و اقسام کے علوم سے آپ کو برابر فرمایا, یہ فقیر ٹائپ انسان بشر حابی, آپ اس کی تلاش میں رہتے ہیں, اس کے یہاں جاتے ہیں, ایسا کیوں؟ تو فرمانے لگے کہ یہ جتنے علوم تم نے میرے متعلق گنوائے وہ بندے خدا ان علوم کا مجھ سے زیادہ ماہر ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.